यहाँ से बाहर बाहर यहाँ से जाना।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा।
यहाँ पे अभी एक घंटे तक बोलने का, एक घंटे बाद
नहीं मध्य मध्य
फोटो सबको बोलते रहो, फोटो नहीं लेना है, दर्शन लेके आगे चलते रहना है फ्रेंड्स, दर्शन लेके आगे चलना है, फोटो नहीं लेना है, ठीक है? ऐसा बोलते रहो, आवाज नहीं।
हरे कृष्णा। सभी जन प्रवचन के लिए बैठ जाइए, माताएं राइट साइड में, जेंट्स लेफ्ट साइड में। हरे कृष्णा। सभी जन प्रवचन के लिए बैठ जाइए, अभी 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा, उसके पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद की भी व्यवस्था है। कृपया सभी जन प्रवचन के लिए बैठ जाइए, माताएं हमारे राइट साइड में बैठिए और जेंट्स लेफ्ट साइड में बैठिए। हरे कृष्णा। व्यासासन की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। आज के इस रविवारीय सत्संग में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार की तरह आज भी हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट मना रहे हैं। इसमें 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन हुआ, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा और उसके पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद भी है। तो हम विनती करते हैं कि सभी जन प्रवचन के लिए बैठ जाए। आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु। सर्वात्मा हरि प्रभु का परिचय कुछ इस प्रकार। प्रभु जी ने अपना सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री और MBA का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसी दौरान वे इस्कॉन संस्था से कनेक्ट हुए कॉलेज में, और कॉलेज पूरा करने के बाद आदित्य बिरला ग्रुप में उन्होंने 3 साल तक नौकरी की है, जॉब किया है। 2010 में इस्कॉन में वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी के रूप में सेवा प्रदान करना चालू किए। गोवर्धन इको विलेज में आने के पश्चात उन्होंने अनेकों सेवाएं निभाई है, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये दो विभाग में उन्होंने सेवाएं निभाई है। अभी वे डहानू और अलग अलग गांवों में जाके कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, और जो यहाँ का स्वागत विभाग है, गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट, उसका भी उत्तरदायित्व निभाते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। प्रभु जी के प्रवचन का विषय है श्री कृष्ण आनंद के सागर। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। सब लोग बोलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जयो राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल, नीताय गौर हरि बोल। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, सब लोग हाथ जोड़िए। ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस रविवार के प्रोग्राम में आज आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, आपकी उपस्थिति आपने दर्शाई, इसलिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हर रविवार को ये प्रोग्राम यहाँ पे होता है, जो भी भक्त यहाँ पे और बहुत सारे लोग भाविक यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कुछ कथा होती है, प्रवचन होता है। उसके पहले जैसे सुंदर कीर्तन हुआ और कथा के बाद यहाँ पे राजभोग आरती होगी, तो उसमें भी आप भाग लीजिए। और विशेष करके ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इस कथा के श्रवण द्वारा। सुंदर आरती जो है उसमें भाग लेके, और बाकी जो हमारा एक वृंदावन फॉरेस्ट, एक मिनी वृंदावन हमने बनाया, उसमें आप जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण आनंद के सागर। तो कृष्ण भगवान जो है वो आनंद के सागर है, और आध्यात्मिक जीवन जो है पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ है। लेकिन उसको हम अपना सकते हैं, उस जीवन को, जब हम इस भौतिक आनंद की निरर्थकता जो है उसको हम समझेंगे, है ना। उसको जब हम समझेंगे तब क्या होगा, हम इस आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक आनंद को स्वीकार कर सकते हैं अपने जीवन में। तो श्रीमद भगवत गीता जो है उससे हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कृष्ण भगवान जो है बताते हैं। तो ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास है, कृष्ण भगवान उन्होंने अपना खुद का नाम इस महीने को दिया है, और उनके मुख से हुई जो वाणी है भगवद गीता जो है उसको हम सुनेंगे, और इस महीने का जो सार्थक हम करेंगे। तो पांचवें अध्याय में 22वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, कैसे ये भौतिक आनंद जो है ये निरर्थक है, बेकार है ये आनंद। तो इसके बारे में बोल रहे, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शुरमते बुध। तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान लोग जो है, बुध यानी बुद्धिमान लोग, तो सबको बुद्धिमान बनना है अपने जीवन में, और सब चाहते हैं कि मैं, और सब सबको चाहिए कि हम लोग हमको बुद्धिमान बोले, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो ये भगवद्गीता हमें बताती है। जो बुद्धिमान मनुष्य
है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो ये भौतिक आनंद जो है उसके लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये भौतिक आनंद जो है एक ग्रंथ में वर्णन आता है कि ये भौतिक आनंद जो है ये केवल कल्पना है हमारी। क्या है? कल्पना। तो मन के अंदर जो कल्पना होती है वही है भौतिक आनंद। तो वास्तविक में भौतिक आनंद है ही नहीं। तो इसमें एक श्लोक में बोलते हैं, द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। तो कभी किसको लगता है कि ये अच्छा है, कभी लगता है कि ये बुरा है। तो क्या बोल रहे हैं? एई सब भ्रम, ये सब गलती है हमारी। तो वास्तविक में इस भौतिक संसार में आनंद है नहीं। तो कभी कोई व्यक्ति खुश होता है, आनंद को प्राप्त करता है, तो और कोई व्यक्ति जो है दुखी हो जाती है। तो ये देखते हैं, कोई व्यक्ति पीड़ा में है, दुख में है, कोई व्यक्ति आनंद में है, लेकिन वास्तविक में ये क्या है? सब मनोधर्म है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो है दूसरे अध्याय में जब भक्ति योग के बारे में बताना चालू करते हैं, तो उसके पहले कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? सुखे दुखे कृत्वा, है ना, वो बोल रहे कि हे अर्जुन, आपको क्या करना है? सुख दुख, विजय पराजय, लाभ और हानि, इसका विचार नहीं करना है आपको। आपको इस विचारों से बाहर निकलना है, इसमें समत्व प्राप्त करना है, और तभी आप भक्ति मार्ग में आपकी गाड़ी जो है चालू हो जाएगी। तो ये सुख, बहुत बार हमको सुख मिलता है तो उसमें हम क्या हो जाते हैं? हर्षोल्लासित हो जाते हैं, बहुत आनंद आता है। कभी दुख आता है तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं कि दुख आया मेरे जीवन में। लेकिन अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि ये भौतिक सुख और दुख जो है, ये भौतिक विजय और पराजय है, ये भौतिक लाभ और हानि है, इससे आप क्या करो? बाहर निकलो आप। तो इस प्रकार से जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताते, एक स्टोरी बताते, वो बोलो पॉटर्स इमेजिनेशन करके। तो एक कुम्हार था जो मटकी बनाता है। तो ये कुम्हार जो था, इसने एक मटकी बनाई और उस मटकी बनाने के लिए उसको खर्चा आया कितना? एक पैसा। और वो कुम्हार सोच रहा था कि ये मटकी जो है, इस मटकी को अभी मैं क्या करूंगा? इसको बेचूंगा मैं, और इस मटकी को बेचने के बाद मुझे दो पैसे मिलेंगे, है ना। तो एक पैसा मेरा खर्चा हो गया और एक पैसे का मुझे क्या होगा? लाभ होगा अभी। तो इस प्रकार से, और फिर सोच रहा था कि दो पैसे मिलेंगे तो उस दो पैसे में क्या करूंगा? मैं दो पैसे में क्या करूंगा? और दो मटके खरीदूंगा, और फिर वो दो मटके जो है वो क्या करूंगा? उसको बेचूंगा, तो कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे? चार पैसे बन जाएंगे। तो ऐसे करते 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 मैं लखपति बन जाऊंगा, ऐसे सोच रहा था। और लखपति बनने के बाद मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी होगी जो मेरा हमेशा सुनेगी, ऐसे सोच रहे थे। ये पत्नी जो है क्या करेगी? मेरा हमेशा सुनेगी। और अगर ये पत्नी मेरा नहीं सुनेगी तो मैं उस पत्नी को एक लात दे दूंगा। और वो ऐसा नकल करते हैं, लात, एक लात मारते हैं, और सामने जो मटका रखा था, उसने जो वो सोच रहा था इस मटके को मैं बेचूंगा, उस मटके के ऊपर वो लात मार देता है। और जैसे ही लात मारता है तो मटका क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो सोच रहा था कि अरे क्या हो गया, मैं वापस अभी गरीब बन गया। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से वो कल्पना कर रहा था कि कैसे मैं लखपति बनूंगा, कैसे अमीर बनूंगा व्यक्ति, लेकिन वो कल्पना में ही जीवन जी रहा था और उस कल्पना में ही उसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से, तो वास्तविक में इस भौतिक संसार का सुख और आनंद जो है ये कैसा है? मनोधर्म, एक मनोधर्म की तरह। तो जब कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको सुख दुख लाभ और हानि, विजय और पराजय में कोई विचार आपको क्या करना है, समत्व रखना है। क्योंकि इस भौतिक संसार का जो सुख है वो सुख किसके ऊपर निर्भर है, वो दुख के ऊपर निर्भर है, वो सापेक्ष है, तुलनात्मक सुख है ये, है ना, ये सापेक्ष सुख बोलते हैं उसको। क्योंकि हमको अगर कोई व्यक्ति सुख जो है, सुख का अनुभव कब उसको लगता है, सुख मुझे सुख, मैं सुख में हूं, जब उसको लगता है कि मेरे पास अभी कोई दुख है नहीं, है ना। या कोई व्यक्ति सुख की जो व्याख्या है वो व्याख्या कैसे देती है, जो चीज मुझे चाहिए वो अगर मिल जाती है और जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो अगर नहीं मिलती तो मैं सुखी हूं। ये भौतिक संसार की सुख की व्याख्या है। क्या व्याख्या है, जो चीज मुझे चाहिए वो अगर मिल जाएगी और जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो अगर नहीं मिलेगी तो मैं क्या हूं, सुखी हूं। तो ये भौतिक संसार के सुख की व्याख्या है। तो ये सब मन के ऊपर चल रहा है, मन के ऊपर चल रहा है ना। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे दिन क्या है, उजाला क्या है, ये अगर किसको समझना है तो उसको रात का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो अगर रात के अनुभव के ऊपर ही वो बता सकता है उजाला क्या है, दिन क्या है, है ना। अगर उसको लाभ, भौतिक संसार में लाभ जो है वो क्या है उसको अगर समझना है तो उसको हानि क्या है मालूम होना चाहिए। या भौतिक संसार में अगर विजय क्या है, जय क्या है वो अगर पता करना है तो उसको पराजय जो है वो मालूम होनी चाहिए, तभी तो वो विजय के बारे में बोल सकता है, है ना। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो सुख है वो सुख हम समझेंगे कब, जब हम इस भौतिक संसार की जो पीड़ा है, दुख है, उसको अनुभव करेंगे, तब इस भौतिक संसार के सुख और आनंद को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये भौतिक संसार और सुख की जो है लक्षण है इसके। तो इस प्रकार से एक बार एक किसान थे। ये किसान जो है इनका एक घोड़ा था और ये घोड़ा जो है एक बार जंगल में भाग जाता है तो आजू बाजू वाले किसान जो है वो आते हैं उनके पास और बोलते हैं, इस किसान को बोलते हैं, अरे अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये किसान बोलता है, क्या पता, अच्छा बुरा क्या पता, और ऐसे करके चले जाता है। और कुछ दिन के बाद जो घोड़ा भाग गया था जंगल में, वही घोड़ा क्या करता है, उसके साथ और एक दूसरे घोड़े को लेके आता है, जंगल के घोड़े को लेके आता है साथ में। और फिर वही बाजू वाले जो पड़ोसी किसान थे वो आते हैं वापस इसके पास और बोलते हैं, अरे वाह आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, जो घोड़ा भाग गया था वो तो आ गया लेकिन और एक घोड़े को लेके आया साथ में। तो ये किसान बोलता है, क्या पता अच्छा बुरा, है ना। तो फिर जो ये जंगली घोड़ा था, ये किसान जो था, इसका जो लड़का था, ये लड़का क्या कर रहा था, ये जो जंगली घोड़ा था उसको उसके साथ यानी उसके ऊपर सवार होके उसको चला रहा था, लेकिन कुछ हादसा होता है और उस घोड़े से गिर जाता है और इसका पैर टूट जाता है, ये किसान के लड़के का पैर टूट जाता है। तो वापस इसके पड़ोसी किसान जो थे वो आते हैं और बोलते हैं, अरे 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 बहुत बुरा हो गया आपके साथ। और फिर वही किसान जो है वो किसान क्या बोलता है, क्या पता अच्छा बुरा क्या है, है ना। और उस देश का जो राजा था वो क्या करता है, युद्ध की घोषणा करता है पड़ोसी देश के साथ और बोलता है कि अपने देश में जितने भी जवान लोग हैं उनको आर्मी में भर्ती कराइए। और ये किसान जो था, इसका लड़का गिर गया था घोड़े के ऊपर से और इसका पैर टूट गया था, है ना। और फिर इसकी भर्ती नहीं होती। फिर वापस पड़ोसी किसान जो आते हैं और बोलते हैं इसको, अरे 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 बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, आपका बच्चा जो है, आपका लड़का जो है बच गया, नहीं तो आर्मी में भर्ती होता था और फिर उधर मारा जाता था। और वापस ये किसान क्या बोलता है, क्या पता अच्छा बुरा, है ना। तो ऐसे करके ये जो कहानी है चलती रहती है। तो वास्तविक में अच्छा बुरा, सुख दुख इस भौतिक संसार में जो है वो कैसे है, सापेक्ष है, तुलनात्मक है, ये तो वास्तविक है ही नहीं, सब मनोधर्म पे चल रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं भक्ति योग की शुरुआत, भक्ति का आनंद जो है कृष्ण के नाम में, कृष्ण की सेवा में, उस आनंद को प्राप्त करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस भौतिक सुख आनंद से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बराबर कि नहीं? क्योंकि ये भौतिक सुख और आनंद जो है हमें उस दिशा में ले जाने के लिए बाधा है, वो है ना। तो अगर अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर में बैठ के आप टेलीविजन देख रहे हैं, टीवी में कुछ सीरियल देख रहे हैं आप, और उसी समय आपका कोई फ्रेंड आता है, आपका मित्र कोई आता है और आपसे बात करना चाहता है, तो उस समय अगर बात करनी है, अपने मित्र से अगर आदान प्रदान करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, टीवी बंद करना पड़ेगा, है ना। जो टीवी में जो सीरियल चल रही है उसको बंद करना पड़ेगा, है ना। तो अभी टेलीविजन चल रहा है, टेलीविजन में वो सुंदर जो है क्रिकेट मैच या कुछ भी देख रहा है, तो अभी पूरी उसकी भावनाएं जो है किस पे लगी है? उस टेलीविजन में क्या चल रहा है उसके ऊपर। अभी वो अपने मित्र के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता वो। तो उसी प्रकार से जब हमें भक्ति का आनंद प्रदान लेना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इस भौतिक संसार के जो सुख दुख है, लाभ हानि है, विजय पराजय है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब उससे हम बाहर निकलेंगे, तभी इस भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार का जो आनंद है, भगवान के नाम में जो आनंद है, उनकी सेवा में जो आनंद है, उनके कीर्तन में जो आनंद है, उनके कथा श्रवण में जो आनंद है, उनके दर्शन में जो आनंद है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि कैसे ये आनंद जो है, आनंद सुख, ये हर एक जीव जो है उसका वो क्या है, उसका उसका धन है वो, है ना। उसका उसका धन है वो आनंद, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हर एक जीव संघर्ष कर रहा है ना? कैसे उस आनंद को प्राप्त करके, है ना। तो भौतिक संसार के सुख को बढ़ा के और भौतिक संसार के दुख को कम करके उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है वो? संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार से, तो लेकिन इस भौतिक संसार के सुख को पाते समय हमारी जो वृत्ति है, वो वृत्ति कैसे बन गई है? हमारी एक स्वामी की वृत्ति बन गई है, स्वामित्व की वृत्ति। तो हम इस भौतिक संसार में स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। तो वास्तविक में भगवान स्वामी है, इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती दे। तो ये भौतिक प्रकृति जो है, ये भौतिक प्रकृति किसकी है? कृष्ण की है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये मेरी प्रकृति है। लेकिन इस भौतिक संसार में हर एक जीव जो है वो क्या कर रहा है? इस भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए इसमें स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, है ना? कि मैं ही सभी सभी चीजों का भोगता हूं, है ना? मैं जो हूं, मैं सभी चीजों का स्रोत मैं हूं, सभी वस्तुओं का नियंत्रक मैं हूं, भोक्ता मैं हूं। तो इस प्रकार से वो क्या करना चाहता है? स्वामी बनना चाहता है। लेकिन वास्तविक में भोक्ता, नियंत्रक और सब वस्तुओं के स्रोत जो है वो कौन है? कृष्ण भगवान है। तो जब ये हम जानेंगे भगवद गीता से, तभी हम शुरुआत करेंगे आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने के लिए। तो इस प्रकार से, तो जैसे भगवद गीता में छठवां अध्याय जो है, उसमें भगवान जो बोलते हैं कैसे मन के ऊपर नियंत्रित करना चाहिए, है ना। तो ये इस भौतिक संसार में हमें क्या सिखाया जाता है? आपके शरीर को क्या करो? ट्रेन करो, है ना। आपके शरीर को नियंत्रित करो, है ना, उसको ट्रेनिंग दो। लेकिन भगवद गीता क्या सिखाती है हमें? आपके मन को नियंत्रित करो, है ना। तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो यह आध्यात्मिक जो आनंद है उसको अगर हमें पाना है, लेकिन भौतिक संसार में हम कितना भी जिम में जाएंगे, अच्छा योगा करेंगे, शारीरिक योगा करेंगे, और इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे तो हम आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सब कुछ कैसा है, नश्वर है, सब कुछ मिटने वाला है। लेकिन भगवद गीता क्या कहती है हमें कि इस मन को हमको नियंत्रित करना है, जो ये मन जो है जो स्वामी बनना चाहता है, जो भोग करने की वृत्ति कर रहा है, तो ये मन को जब हम नियंत्रित करेंगे तो वास्तविक में क्या होगा, हम जो आध्यात्मिक आनंद है उसको हम पा सकते हैं। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर आनंद को, आनंद को प्राप्त करना है तो आप क्या कीजिए, इंद्रिय भोग कीजिए, इंद्रिय भोग में लग जाइए। जितना आप इंद्रिय भोग करेंगे उतना आपको क्या होगा, आनंद मिलते रहेगा। अगर किसी वस्तु को, कोई चीज आपको खाने में अच्छी लगती है तो उसको क्या कीजिए, आप खाते रहिए, खाते रहिए। कोई म्यूजिक अच्छा लगता है सुनने के लिए तो उसको सुनते रहिए, भौतिक जो संगीत है उसको सुनते रहिए। लेकिन वास्तविक में क्या है, ये भौतिक आनंद को, इंद्रिय भोग क्या बनेगा, हमारे हमारे दुख का कारण बनेगा। जैसे यहां पे बताया है, दुख योनये एवते, है ना। तो इस प्रकार से भगवद गीता हमें क्या कहती है, भगवद गीता हमें कहती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, हमको इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रित हो, उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ना कि हम इंद्रिय भोग करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसे नहीं है। जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तभी क्या होगा, हम आनंद को जो है प्राप्त करेंगे। तो इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वाण्यद उपारमं वा। तो ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस भौतिक संसार के लोग जो है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, किस लिए, सुख पाने के लिए, सुख को पाने के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, है ना, तो सुख पाने के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, नते सुखम वान्यद उपारमं वा। तो श्रीमद् भागवतम जो है क्या बता रहा है, उनको सुख, वो सुख पाने के लिए कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको सुख नहीं मिलता, और उस कर्म से जो है वो, जो उनकी सुख पाने की जो इच्छा है वो भी शांत नहीं होती, उपारमं वा, तो वो भी शांत नहीं होती, उल्टा क्या होता है, उनको दुख ही मिलता है। तो इस प्रकार से सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्यत उपारमं वा। तो इस प्रकार से हमको सुख, ये कर्म करने से सुख पाने के लिए, इंद्रिय भोग आनंद को प्राप्त, आनंद की इच्छा से हम कर्म करते हैं लेकिन उसमें कोई हमको सुख नहीं मिलता, और उल्टा क्या होता है, हमें दुख ही मिलता है उसमें। इसलिए बोला गया कि सोहम नुनाम शुल्ल सुखाय दुखम, तो बोलते हैं कि सोहम नुनाम शुल्ल सुखाय दुखम, और जो सुख मिलता है वो कैसा है, बहुत ही शुल्ल सुख है, शुल्ल यानी बहुत ही छोटा सुख है। लेकिन उल्टा क्या बोलता, उल्टा क्या मिलता है हमें, दुखम महद गतानाम, लेकिन दुख जो है वो कैसा मिलता है, बहुत ज्यादा दुख मिलता है। सुख बहुत छोटा है और दुख कितना है, बहुत ज्यादा, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये भौतिक आनंद है, ये भौतिक सुख है। और बोलते हैं कि भौतिक सुख जो है ये कैसा है, शुद्ध नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते एक जगह पे, ये भौतिक सुख जो है कैसा है, मिलावटी है, मिलावटी सुख है ये, शुद्ध सुख नहीं, शुद्ध आनंद नहीं मिलेगा आपको ये। जैसे अगर उदाहरण के लिए बताया जाता है, जैसे दूध, जो दूध है तो ये दूध पीना अच्छा होता है, शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दूध अगर चाहिए तो दूध अगर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गाय को रखना पड़ेगा। जैसे ये उदाहरण जो है प्रभुपाद जी देते हैं, तो गाय को रखना पड़ेगा आपको, और उस गाय को आपको संभालना पड़ेगा, है ना, तो तब जाके आपको क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, है ना। तो वो दूध पाने के लिए आपको कुछ पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, दुख सहन करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सहजता से आपको दूध नहीं मिलेगा वो, बराबर कि नहीं। वो गाय संभालने का जो दुख है, पीड़ा जो है, उसको सहन करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक सुख है, आनंद जो है, वो कैसा है? मिलावटी है। पूरा शुद्ध आनंद नहीं मिलेगा आपको इस भौतिक संसार में। तो ये भौतिक आनंद का लक्षण बताया गया है। और बोलते हैं, जैसे इस श्लोक में बताया है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख है एवते। तो ये आनंद जो है कैसा है? संस्पर्शजा भोगा, जब इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क 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 जब होता है तभी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुलाब जामुन जो है, उस गुलाब जामुन को जब हम जिह्वा के ऊपर रखेंगे, या आम जब है वो उस आम को जब खाएंगे तभी तो वो आनंद प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से, लेकिन जब वो आनंद कब तक रहेगा आपके, कब तक मिलेगा आपको? जब तक वो जिह्वा के ऊपर है तब तक ही आनंद मिलेगा। उसके बाद आनंद जो है क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो इसलिए ये ही संस्पर्शजा भोगा। तो जब इसलिए बोलते हैं कंडू यनेन करयोर इव दुख दुःखम्। तो जिस प्रकार से अगर किसी को खुजली होती है, किसी को खुजली होती है तो थोड़ा सा खुजाएंगे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, है ना, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन वो खुजली कम होने वाली है खुजाने से? नहीं, वो खुजली क्या होने वाली है? और बढ़ेगी। तो इसको, इसलिए हमको क्या लगेगा? इसको और खुजाऊं और खुजाऊं। तो और खुजाते रहेंगे तो क्या होगा? फिर वहां से खून निकलना चालू हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कंडू यनी न करयोर इव दुख दुख। तो ये भौतिक सुख जो है इसी प्रकार से है कि बहुत, जब तक वो इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क है तभी तक, तब तक ही वो सुख जो है बना रहता है, उसके बाद वो सुख नहीं मिलता। तो इस प्रकार से, और बताया है कि वो पीड़ा से, पीड़ा से भरा हुआ है, दुख योनय एवते, है ना। तो यहां पे इस श्लोक में जो भौतिक सुख जो है उसकी परिभाषा बताई गई है, परिभाषा बताई है। तो भौतिक सुख और आनंद जो है कैसा है? भौतिक आनंद जो है वो पीड़ा के बराबर है, है ना। भौतिक आनंद जो है वो कैसा है? पीड़ा के बराबर है। तो इस प्रकार से, तो प्लेजर, भौतिक आनंद जो है तो वो किसके बराबर है? पीड़ा के बराबर है। तो इस प्रकार से दुख योनि है वो। तो कोई बोलेगा, अरे कैसे, जब हम सुख को अनुभव करते हैं तो हमें सुख मिलता है, जब हम दुख अनुभव करते हैं तो दुख मिलता है, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहां पे कृष्ण भगवान जो है भगवद गीता में हमें बता रहे हैं कि कैसे ये भौतिक सुख जो है ये पीड़ा के बराबर है। दुख योनि एवते, हमें जो है दुख मिलने वाला है इस भौतिक संसार में। और कैसे है ये सुख जो है, कैसा है बताया है? तो ये सुख जो है, ये सुख जो है शुरुआत में कैसे लगता है? अमृत की तरह लगता है। शुरुआत में कैसा है ये भौतिक सुख, आनंद जो है कैसा है? अमृत की तरह है। लेकिन बाद में कैसा है वो? बाद में वो जहर की जैसा है, पॉइजन की तरह है, है ना। यत्तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमे इव। तो कोई चीज, मीठी चीज खाने में बहुत अच्छी लगती है तो उसको हम खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में वही चीज अगर खाएंगे हम तो कोई व्याधि जड़ जाएगी हमें, और व्याधि जड़ जाएगी, और वही मीठी चीज क्या हो जाएगी? हमारे दुख का कारण बनेगी, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर इस भौतिक संसार से, धन, अपनी संपत्ति से बहुत आसक्त है, अपने धन से बहुत आसक्त है, लेकिन जब वो धन अगर उससे छूट जाता है, वो निकल जाता है उससे, उस धन से वो दूर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वही धन जो है उसकी पीड़ा का कारण बन जाता है, उसके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए यहां पे बताया गया है कि दुख योनय एवते। तो इस भौतिक संसार का जो आनंद है, सुख जो है, वो कैसा है? दुख की योनि है। तो इस भौतिक संसार में हम किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हम आसक्त हो जाते हैं, और वो वस्तु और वो व्यक्ति अगर हमसे छीन ली जाती है तो क्या हो जाता है, वही वस्तु वही व्यक्ति जो है हमारे दुख और पीड़ा का कारण बन जाती है। तो इसलिए दुख योनये एवते, तो इस प्रकार से इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, वो देख रहा है कि इस वही चीज को वो क्या कर रहा है, वापस उसको ही चबा रहा है, उसको ही चबा रहा है, उसको ही चबा रहा है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलने वाला। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसको मालूम है, किसी व्यक्ति को अगर मालूम है, मालूम नहीं है कि गन्ना जो है ये गन्ना कैसे होता है, ये उसको मालूम नहीं है, या गन्ना क्या होता है उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसका मित्र जो है उसको मालूम है ये गन्ना क्या होता है, तो ये बताता है अपने मित्र को कि ये गन्ना जो है कैसे होता है, दिखने में कैसा होता है, दिखने में ये बांबू जैसा होता है ना, और कितना लंबा होता है, बांबू जैसा ही बड़ा होता है, तो उसके अलग अलग लक्षण बताएगा, और उसको चबाएंगे तो आपको क्या होगा, मीठा रस निकलेगा उसमें से। तो केवल इसको सुनेगा वो और फिर अपने घर जाके अलग अलग बांबू लेगा और अलग अलग बांबू लेके उसको चबाते रहेगा, तो उसको वो रस मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला, तो वो रस नहीं मिलने वाला उसको, कितना भी उस अलग अलग बांबू को प्रयास करते रहेगा तो वो रस नहीं मिलने वाला, उस बांबू से वो रस नहीं आने वाला। तो उसी प्रकार से पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, इस भौतिक संसार में वास्तविक में सुख है, आनंद है ही नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वापस उसको चबा रहे चबा रहे, हम सोच रहे कि अभी थोड़ा हम उसमें से अभी थोड़ा चबाऊंगा तो रस निकलेगा, अभी थोड़ा सा चबाऊंगा तो रस निकलेगा, लेकिन रस नहीं निकल रहा है उसमें से। तो इस प्रकार से, और इस भौतिक संसार में जो आनंद है उस आनंद को हम सोच रहे कि इसको और मैं जुटाऊंगा, सब व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, जुटाने में लगे हैं, तो किसको लग रहा है कि मेरे पास आज इतना धन है, कल मेरा इतना धन हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा, है ना, आज मेरे पास 1 BHK है, कल 2 BHK हो जाएगा, कल 3 BHK हो जाएगा, आज एक गाड़ी है, कल 2 गाड़ी हो जाएगी, 3 गाड़ी हो जाएगी, तो मुझे आनंद होगा। लेकिन हम कितना भी जुटाएंगे तो हमारा, हमको आनंद नहीं मिलने वाला। जैसे प्रभुपाद जी एक कथा बताते, एक स्टोरी बताते, जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, और वो अमीर व्यक्ति जो थे उनके घर में उनकी पत्नी और उनके घर में उनकी जो नौकरानी थी, दोनों को बुखार आता है, उनकी पत्नी को भी बुखार आता है और उनकी नौकरानी को भी बुखार आता है, और वो डॉक्टर को बुलाते हैं घर में, और डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर दोनों को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद बोलते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो, उसको ज़्यादा खतरा नहीं है, उसका जो बुखार है वो केवल 98 है, लेकिन आपकी जो नौकरानी है वो ज़्यादा सीरियस है, उसका जो बुखार है वो कितना है, उसका बुखार 107 है बुखार। तो ये जब उसकी पत्नी जब सुनती है तो पत्नी बोलती है, अरे आप तो डॉक्टर है ही नहीं, आप झूठ मूठ के डॉक्टर हो, आप कैसे डॉक्टर हो, वास्तविक में मालकिन तो मैं हूं और ये नौकरानी है, और मुझे जो है, मुझे 98 और इस नौकरानी को 107, ऐसे कैसे, मुझे ज्यादा होना चाहिए, मैं मालकिन हूं, है ना, तो ऐसे बोल दे। तो अभी उसको अगर ज्यादा मिलेगा तो वो तो मरने को मर जाएगी वो। तो उसी प्रकार से हम अगर इस भौतिक संसार में बहुत सारी चीजें जुटाते रहेंगे कि ये अगर मुझे इतना मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना मिलेगा तो आनंद मिलेगा, लेकिन नहीं, वो सुख आनंद जो है नहीं मिलने वाला हमको। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये झूठा आश्वासन जो है, ये भौतिक संसार का जो सुख है वो झूठा आश्वासन हमें देता है। तो इसलिए शास्त्र में बताए गए, तो एक बहुत बड़े आचार्य जो है वो लिखते हैं, तातले सैकत वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाज। तो इस भौतिक संसार में आनंद जो है वो आनंद कैसा है, तातले सैकत वारी बिंदु सम। कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में है, कोई व्यक्ति रेगिस्तान में है तो उस रेगिस्तान में बहुत गर्मी से वो तड़प रही है, ऊपर से कड़ी धूप है, नीचे जो रेती है वो पूरी तप गई है और आजू बाजू में पूरी गर्म हवा चल रही है, और वो व्यक्ति उस रेगिस्तान में देख रहे कि कहां मुझे पानी मिलेगा, कहां पानी मिलेगा मुझे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आके उस व्यक्ति को केवल एक बूंद पानी देती है तो उसकी प्यास बुझेगी? प्यास बुझेगी क्या उसकी? प्यास बुझेगी नहीं, प्यास तो और बढ़ेगी, है ना। तो वो बोलते हैं कि तातले सैकत वारी बिंदु सम, वारी बिंदु, बिंदु यानी बूंद। तो इस भौतिक संसार का जो सुख है, आनंद जो है, वो कैसा है? एक बिंदु की तरह है, बिंदु की समान है वो, है ना। लेकिन आत्मा जो है, उस आत्मा की भूख कितनी है? आत्मा की भूख कितनी है? सागर की भूख है, उसको सागर चाहिए, आनंद का सागर चाहिए उसको। केवल एक बूंद से वो शांत नहीं होने वाली भूख, है ना, उसको सागर चाहिए। तो इस प्रकार से, और वो आनंद का सागर है कृष्ण भगवान, है ना। और जब हम कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं ममय वामशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि वास्तविक में हम किसके बच्चे हैं? कृष्ण के बच्चे। कृष्ण बोलते हैं कि ममय वामशो, हर एक जीव जो है वो मेरा मेरा बच्चा है, मेरा अंश है वो। और कृष्ण जो है वो कोई साधारण नहीं है, है ना। कृष्ण कैसे हैं? सच्चिद आनंद विग्रह है वो, है ना। सच्चिद आनंद विग्रह होने के कारण हम भी जो है, हम कैसे हैं? हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा होने के कारण हम भी कैसे हैं? सच्चिद आनंद, हम भी सच्चिद आनंद है। तो सच्चिद आनंद होने के कारण हमें भी क्या है? हम भी हमेशा आनंद की खोज में है, कहां मुझे आनंद मिलेगा, कहां मुझे आनंद मिलेगा। और वो आनंद जो है हमें एक बूंद से नहीं, हमें सागर जो है, तभी सागर जब मिलेगा तभी उस प्यास को बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से, इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांचन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः। तो कृष्ण भगवान के जो भक्त है, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांचन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, तो कृष्ण भगवान के जो भक्त है वो और किसी की इच्छा नहीं करते, वो केवल और केवल एक ही इच्छा करते हैं। वो क्या इच्छा करते हैं? जो भगवान को पूरी तरह से भगवत प्रपन्ना, जो भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं, वो केवल एक ही इच्छा करते हैं, और वो इच्छा है केवल और केवल कृष्ण भगवान को प्राप्त करने की। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, और उनकी जो कथा है, कृष्ण भगवान की जो कथा है, उनके बारे में जब श्रवण हम जब करते हैं तो हमें क्या होता है? अति अद्भुतम, वो कथाएं जो है बहुत अद्भुत है, और इस अद्भुत कथाओं को जब हम श्रवण करते हैं वो क्या होता है? गायंती आनंद समुद्र मग्न, तो वो जीव जो है पूरी तरह से मग्न हो जाता है इस भौतिक संसार के आनंद में, पूरी तरह से क्या हो जाता है? मग्न हो जाता है। और वो आनंद कैसा है? वो आनंद जो है एक बिंदु की तरह नहीं है, वो आनंद कैसा है? सागर की तरह है, वो सागर की तरह आनंद है। गायंती आनंद समुद्र मग्न, तो इस प्रकार से, इसलिए भगवत गीता भी बोलती है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत इच्छ माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो मेरे भक्त जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ये गीता भागवत जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। और ये सागर जो है, आनंद जो है, ये आनंद जो है, सागर जो है, सागर आपने कभी देखा? इस भौतिक संसार का जो सागर है वो सागर कभी बढ़ता है क्या? बड़ा हो जाता है? कभी उसमें बाढ़ आती है क्या? कितनी भी बारिश हो उसमें बाढ़ आती है क्या कभी? अभी एक महीने से बारिश हो रही थी पूरे बहुत सारी जगहों पे, और पूरा ये पानी जो है, सब पानी, जब नाली का पानी जो भी है, नदियों का पानी जो है, वो जाके कहाँ मिलता है? सागर में मिलता है, है ना। लेकिन कितनी भी नदियां जो है सागर में बहती जाती है, लेकिन वो सागर का पानी जो है कभी बढ़ता नहीं,
नदियों में बाढ़ आती है, लेकिन वो वही बाढ़ का पानी अगर सागर में जाता है, लेकिन सागर जो है सागर कैसे रहता है, शांत ही रहता है। लेकिन इस आध्यात्मिक संसार में जो आध्यात्मिक आनंद है वो कैसा है, वो हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये सागर जो है कैसा है, बढ़ते जाता है। ये विशेषता है इस सागर की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो बोल रहे आनंद अम्बुद वर्धनम प्रतिपदम, हर एक पद पे ये आध्यात्मिक आनंद जो है, जिसकी तुलना आनंदाम्बुधि, अम्बुद यानी अम्बुद किसको बोलते हैं, अम्बुद यानी सागर है ना। तो ये आनंद, ये जो आनंद का जो सागर है वो कैसा है, वर्धनम, वर्धनम यानी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। प्रतिपदम हर एक क्षण बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक आनंद की विशेषता है। तो कितने लोग चाहते हैं इस आनंद को प्राप्त करें, हम हाथ ऊपर कीजिए। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस आनंद को प्राप्त करे, विशेष करके इस पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास जो है बहुत ही विशेष महीना है, और अभी लास्ट आखिरी तीन दिन बचे हैं इस पुरुषोत्तम मास के। तो बहुत सारे भक्त जो है, भाविक जो है, इस महीने में कुछ व्रत रखते हैं ज्यादा से ज्यादा हम। और विशेष करके तीन चीजें बताई है शास्त्र में कि हमें इस महीने में जो है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जैसे पवित्र नदियां है जो बताई है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सात पवित्र नदियां हैं, लेकिन बाकी भी है। तो इसमें ये विशेष करके सात नदियां हैं, तो इसमें पवित्र स्नान करना चाहिए। या आप उसमें स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सुबह में। और सुबह जब उठते हैं आप, तो आपके जो भी बकेट है, जिस बकेट से पानी लेने वाले, स्नान करने वाले हैं, तो कम से कम आप इस पवित्र नदियों को क्या कीजिए, आप आह्वान कीजिए कि कृपया करके आप इस पानी में आ जाइए। मैं तो नहीं आ सकती वहां पे, लेकिन आप आ जाइए, है ना। और ऐसे मन से उनको आह्वान करके और फिर स्नान कीजिए आप, है ना। तो इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। और एक चीज बताइए कि हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हमको नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप, या भगवान के जो कथा है उसको श्रवण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये विशेष करके हरे कृष्णा महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को ये नाम जप मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को मालूम नहीं है, वो हाथ ऊपर कीजिए। तो जिनको मालूम नहीं है, कृपया करके इसके बारे में जानकारी हमारे नीचे के ऑफिस में आप ले सकते हैं। तो विशेष करके ये महामंत्र जो है, चैतन्य महाप्रभु कलो तद हरि कीर्तना, चैतन्य महाप्रभु जो है इस हरिनाम संकीर्तन को, इस कलियुग का जो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्विता, इसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इस कथा श्रवण को, नाम जप को आप कीजिए। कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में आप व्रत लीजिए। जो लोग पहले से नाम जप कर रहे हैं वो तो अच्छा है, कम से कम 16 माला तो कर रहे हैं, लेकिन और भी नाम जप बढ़ाइए। जो लोग नाम जप नहीं करते हर दिन, कृपया करके इस नाम जप की शुरुआत कर सकते हैं आप। एक 15 मिनट आपकी चाहिए, है ना। हर दिन आप क्या कीजिए, सुबह 15 मिनट निकालिए और दो माला तो कम से कम चालू कीजिए, दो माला से शुरुआत कीजिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो इसके बारे में जानकारी आपको हमारे नीचे के ऑफिस से मिल जाएगी, कैसे ये नाम जप करना है, ये महामंत्र का स्टिकर जो है उसके बारे में वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये नाम जप आप चालू कीजिए। जैसे मैंने बताया क्लास में कि हमें शरीर को नियंत्रित करने से अच्छा हमको क्या करना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये मन को नियंत्रित करने का सबसे सुलभ और सरल तरीका जो है, ये भगवान के नाम का जप है ना, मनस्त्रायते इति मंत्र। जब हम मंत्र को जप करते हैं तो ये मंत्र जो है क्या करता है, क्योंकि ये मन जो है सूक्ष्म है, और ये मंत्र जो है, मंत्र क्या करता है, इस सूक्ष्म पदार्थ को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से तो मंत्र नाम जप कीजिए, भगवान को है दिया दिखाइए, है ना। तो इस महीने में पुरुषोत्तम मास में हम क्या करते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। कितने लोग दिया दिखाते हैं हर दिन भगवान को? तो जो लोग नहीं दिखाते, कृपया करके घी की बाती में, घी की बात जो है उसको, भगवान को हर दिन बचे हुए दिनों में आप क्या कीजिए, भगवान की पिक्चर होगी आपके घर में तो उनको आप क्या कीजिए, दिया दिखाइए। और एक चीज बताइए इस मंथ में, इस महीने में, कि हमें दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, विशेष करके जो आध्यात्मिक संस्था है, जैसे यहाँ पे आप आए, ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है, इस्कॉन जो है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, तो अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, 6 और 7 सितंबर जो है जन्माष्टमी का दिवस है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जन्माष्टमी होती है। तो पिछले साल जब हमने जन्माष्टमी मनाई थी तो कम से कम 30,000 लोग यहाँ पे आए थे 2 दिन जन्माष्टमी में। तो हम सोच रहे कि इस जन्माष्टमी में कम से कम 50 से 60,000 लोग आएंगे यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन। तो जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही है जन्माष्टमी के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है, पूरे पंडाल होते हैं, कथा प्रवचन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। तो आप जो है इस दान में भाग ले सकते हैं। तो अभी पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में आप ये दान करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जब हम कोई भौतिक चीज के लिए दान करते हैं तो उसका जो लाभ है हमें किस, वो शरीर के स्तर पे होता है, भौतिक वस्तु के स्तर पे होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक कार्य के लिए जब दान करते हैं तो उसका लाभ जो है हमें आत्मा के स्तर पे मिलता है, बराबर ना। तो उसका लाभ हमें किसके, कौन से स्तर पे मिलता है, आत्मा के स्तर पे मिलता है। तो ये शाश्वत लाभ हमें होगा। तो ये जो दान हम करेंगे इसका लाभ जो हमें होगा वो कैसा होगा, हमारे शाश्वत खाते में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब भौतिक वस्तु के लिए दान करेंगे तो उसका लाभ जो है केवल इस शरीर के साथ ही रहेगा, और ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो वो आनंद, जो सुख है, जो आनंद है, वो भी नष्ट हो जाएगा और वो लाभ भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस महीने में ये दान कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सुंदर दर्शन है यहाँ पे, इस दर्शन को हम कर सकते हैं। तो बहुत ही एक सुंदर श्लोक है, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज जी को, उसे बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो बोलते हैं कि ये जो ब्रजवासी है, अभी आप इस कथा के बाद वृंदावन में जाएंगे, हमने यहाँ पे वृंदावन बनाया है, मिनी वृंदावन बनाया है। कितने लोग वृंदावन गए हैं अभी तक, वृंदावन में गए हैं? जो वृंदावन, वो हमने जो ओरिजिनल वृंदावन है, बहुत ही कम लोग गए हैं। लेकिन आप इस वृंदावन में जाएंगे तो ये प्रति वृंदावन हमने बनाया है, तो आपको वही लाभ होगा वृंदावन में जाने का, है ना। तो यहाँ पे हमने यमुना नदी भी बनाई है, तो यहाँ पे स्नान तो नहीं, स्नान की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे दर्शन से स्नान कर सकते हैं, है ना। यमुना नदी के जो दर्शन है उसके दर्शन लेके आप स्नान का लाभ ले सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो गोसाम। तो ये वृंदावन की जो ब्रजवासी है उनका भाग्य कितना बड़ा है, बहुत बड़ा भाग्य है इनका। क्यों? यन मित्रम परमानंदम, है ना, क्योंकि इनके मित्र कौन है, इनके सखा, इनके जो हितचिंतक है वो कौन है, कृष्ण भगवान है, परमानंदम, जो परम आनंद के स्रोत है, सागर है वो, ये इनके मित्र हो गए, इनके सखा बन गए हैं, इनके प्रियकर बन गए हैं, इनके वो पुत्र बन गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये कृष्ण जो है इनके जो सभी आनंद के जो स्रोत है, सभी आनंद के स्रोत है, वो कृष्ण जो है इनके, इन ब्रजवासियों के क्या बने हैं, सखा बने हैं। तो ये ऐसे जो ब्रजवासी है उनके गुणों की महिमा गा रहे वो। तो कृष्ण भगवान जो है ये सभी आनंद के सागर है, और उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं उनके नाम जप, शुरुआत, उस आनंद की शुरुआत जो है उसको हम हम चालू कर सकते हैं उनके नाम को जप करके। तो कृपया करके आप भी जो है इस नाम को लेना चालू कीजिए। तो इस प्रकार से हम इस पुरुषोत्तम मास जो है उसको सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री पुरुषोत्तमाधिक मास की जय। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु। प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे पारंपरिक रूप से तीन बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा। हर संडे को सुबह दोपहर को 12 से 12:30 इस समय में भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है। उसमें हम सभी जन डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। एक प्रभु जी कीर्तन गाएंगे, उनके पीछे पीछे हम भी हरे कृष्णा महामंत्र दोहराएंगे। कीर्तन करते समय नृत्य करने का भी एक तरीका है। पहले जब भी स्लो कीर्तन रहता है उस समय एक पैर ऊपर एक पैर नीचे पीछे ऐसा करते हुए डांस करना है। और थोड़ा कीर्तन फास्ट होता है तो सर्कल बनाकर हम डांस कर सकते हैं या आगे पीछे डांस कर सकते हैं। तो जैसे कुछ पहले से जो भक्त है वो करते हैं, उनके साथ साथ हम भी नृत्य करते करते भगवान की आरती में भाग लेंगे। 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। लगभग सभी जनों को कूपन मिले होंगे। जिनको कूपन नहीं भी मिले हैं उनके लिए भी लंच प्रसाद की व्यवस्था है। तो सबसे विनती है कि कोई भी प्रसाद लिए बगैर घर ना जाए। तो 12:30 बजे ललिता भवन में सबके लिए लंच प्रसाद है। उसके पश्चात जिन किन भक्तों को वृंदावन की परिक्रमा करनी है, प्रभु जी ने अपने प्रवचन में वृंदावन के बारे में बताया, तो वृंदावन फॉरेस्ट जो मथुरा में जो वृंदावन है उसी का प्रतिकृति यहाँ पे गोवर्धनिको विलेज में बनाया है। मिनी वृंदावन हम बोल सकते हैं। वहाँ के मुख्य मंदिर यमुना नदी गोवर्धन पर्वत सभी, तो उसका दर्शन और परिक्रमा आप कर सकते हैं। उसके लिए नीचे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। वो करने के पश्चात आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अभी आप आरती में भाग लीजिए, 12:30 बजे प्रसाद के लिए जाइए लंच प्रसाद के लिए, उसके पश्चात परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। इवनिंग में भी यहाँ पर भजन कीर्तन होगा। साथ ही साथ जैसे प्रभु जी ने आपको सबको आमंत्रित किया है 6, 7, 8 सितंबर, ये 3 दिन हम जन्माष्टमी का महामहोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। तो उसमें हम आप सभी को आपके परिवारजन और मित्र परिवार के साथ आमंत्रित करते हैं। तो कृपया आइए और जन्माष्टमी का भी आनंद उठाइए। लगभग 12:00 बजे तक उस दिन कीर्तन प्रवचन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू रहेंगे और भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का 12:00 बजे महाआरती होगा। तो कार्यक्रम की पूर्ण सूची नीचे लगाई गई है। तो जो भी भक्त पहली बार आज इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए उनसे विनती है कि कीर्तन के पश्चात 12:30 बजे इस ओर आप आ सकते हैं। तो प्रभु जी आपने आपको गोवर्धन इको विलेज के बारे में संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन देंगे। हरे कृष्णा। तो अभी सभी जन आरती के लिए खड़े हो सकते हैं।